जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। पुण्य पाप अधिकार समाप्त हो गया है और उसके अंत का मंगलाचरण का कलश है। मंगलाचरण आदि में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। तो इस तरह ये इस अधिकार के अंत का मंगलाचरण है, इसे मध्य मंगलाचरण भी कह सकते हैं। क्यों? पूरे समय सार नामक ग्रंथ का जो नमा समय साराय है, अमृत विधि आत्मघाती टीका का, वो आदि मंगल है और जो अंतिम कलश होगा ना, वो उसका अंत मंगल होगा। और ये बीच में जो अधिकारों के मंगल आ रहे हैं, तो अधिकार की अपेक्षा आदि और अंत कह सकते हैं और वे के भी बाकी के सब मध्य मंगल हैं। ये सब बात समझने के लिए आप ऐसी कल्पना करो, कल्पना क्या करो, वस्तु स्वरूप है। कुंद कुंद ने जब गाथाएं लिखी तो 415 गाथाएं बस एक साथ ऐसी सीधी लिख दी। उनने कोई दिमाग में अधिकार का बंटवारा उनने नहीं किया। अब उस सहज प्रतिपादन में ऐसा होता है, जैसे अपन भी सात तत्व को समझाने की कोशिश करें तो जीव को समझाते, फिर अजीव को समझाते, असत को समझाते, अपन ऐसे दिमाग में सात अधिकार नहीं बनाते। जितना अपन को जीव को समझाना समझा देते हैं, फिर अजीव की बात करने लगते हैं, फिर असत की बात करने लगते हैं, ऐसे ऐसे मोक्ष तक बात करने लगते हैं। अब मान लो ऐसा लिखें तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर बाद में के लोग टीकाकार वगैरह उन्हें अधिकारों में विभक्त करते हैं। ऐसा हुआ है इसमें। लेखन शैली दो प्रकार की होती है, गद्य शैली खासकर। एक तो ऐसी होती है कि हम छोटे छोटे हेडिंग बनाते हैं, एक पेज में तीन हेडिंग बना दिए और फिर उसे बांट बांट करके लिखते जाते हैं। और एक ऐसी होती है हम सलंग लिखते जाते हैं। जैसे मान लो हमें अजीब से हम आसव तत्व पर आए तो हम पैरा में आसव तत्व की बात करेंगे, ऊपर हेडिंग में आश्रम नहीं लगाएंगे। अपनी किताबों में यदि आप गद्य साहित्य की दृष्टि से निरीक्षण करेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय ऐसी है कि जिसमें छोटे छोटे हेडिंग नहीं दिए गए हैं। धर्म के दर्शन ऐसी है जिसमें छोटे छोटे हेडिंग नहीं दिए गए हैं। तो तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय तीर्थ ऐसी है कि जिसमें दिए गए हैं। अब आप दोनों पढ़ जाएंगे लेकिन आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि इनमें क्या फर्क है। जब वो पढ़ेंगे तो उस जैसा पढ़ लेंगे और ये पढ़ेंगे तो इस जैसा पढ़ लेंगे, ख्याल में है ना। पता ही नहीं पड़ेगा कि इसमें कोई शैली में फर्क पड़ गया है। अब दोनों के गुण दोष हैं। जो छोटे छोटे हेडिंग देते हैं तो उसमें आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रहता है कि भाई अभी ये बात बता रहे हैं और ये खत्म हो गई, अब ये बता रहे हैं। थोड़ा आपका दिमाग में थोड़ा सा आराम मिलता रहता है। अब देखते हैं कि भाई यहां से इतना ही पढ़ना है, फिर हेडिंग खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत घबराहट नहीं छूटती है। और 25 पेज तक कहीं कोई नया हेडिंग आया ही नहीं तो आपको घबराहट छूटती है, जबकि उसमें भी विभाज तो है। ये तो इस छोटे छोटे हेडिंग लगाने का गुण है। और दोष क्या है कि हर जगह फ्लो टूटता है, क्योंकि हम नया हेडिंग देते हैं तो एक दो लाइन में उसकी भूमिका देनी पड़ती है और जब उसे खत्म करके उससे नया हेडिंग देंगे तो उसका उपसंहार करना पड़ता है। तो बार बार भूमिका, बार बार उपसंहार, समझे ना। तो विषय वस्तु टूटती है और हम सलंग लिखते जाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा प्रतिपादन होता है। अब नए चक्र है तो नए चक्र को किसमें लेंगे, तो वो सर्वोदय तीर्थ जैसा तो हेडिंग बीच बीच में दिए गए हैं, ऐसी किताब है। फिर भी उसमें एक पेज में चार हेडिंग दे दिए ऐसी नहीं है। एक हेडिंग दे दिया व्यवहार, हमने दे दिया कि निश्चय व्यवहार, तो वो एकदम 30 पेज तक चलता गया।
समझे ना,
तो उपचेत असदभूत सदभूत ऐसे हेडिंग नहीं दिए बीच में। तो ये तीसरी शैली है कि हेडिंग दिए भी हैं और कम से कम दिए, फ्लो भी बाधित नहीं हो और एकदम लंबा नहीं हो जाए। कैसे अभी ये सब शैलियां होती हैं और साधारण पाठक तो कुछ समझता नहीं है कि कहां क्या, अब इनका प्रयोग कैसे करना। इनका प्रयोग विषय वस्तु का जो प्रतिपादन होता है ना, उसके हिसाब से उनका प्रयोग हमको तय करना पड़ता कि हम इस किताब में किस शैली का उपयोग करेंगे, है ना। मीटिंग नहीं बैठानी पड़ती है, वो अपने दिमाग में ही मीटिंग बैठानी पड़ती है, उसमें आप बहुत आजाद भी रहते हैं और समझ लो कि किसी का स्वतंत्र मात्र सहयोग भी नहीं होता है, दो ही उसमें भी गुण दोष हो गए ना, पूरी आजादी गुण है और सहयोग का अभाव एक कमी है। इस समय साल बस बिल्कुल कंटिन्यूस 415 गाथाएं उनने लिख दी है, कोई उनने विभाग नहीं किया, लेकिन फिर भी एक व्यवस्थित क्रम तो चलता ही है ना। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, उनके दिमाग में कोई क्रम नहीं होता ना, कहां कहां से कहां पहुंच जाते, कहां पहुंच जाते, एक आता एक कलश उसका था वो कलश एक कलश एक कलश का ऐसे ऐसे पहुंचते, कहां से शुरू हुए थे कहां खत्म हुए थे। बल्कि उनसे पूछो कि तुमने एक घंटा प्रश्न किया है तो कौन से सब्जेक्ट पे किया, तो बता ही नहीं सकते, उन्होंने सोचा ही नहीं था, बस शुरू कर दिया, घड़ी देख के खत्म कर दिया। तो क्या विषय कहना था, क्या प्रतिपादन हुआ है कि नहीं, उसमें कितना हो गया, कितना पॉइंट बाकी रह गए, ये गाथा का अर्थ कर रहे हैं तो कितनी बातें बता दी, कितनी बातें बाकी हैं, उनके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है, करते जाते हैं करते जाते हैं, जो कुछ कहते जाते हैं, जो हो गया वही पूरी है, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल दो बातें रह गई जो कल बताएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर अमृतचंद्राचार्य देव ने इसका अंत में ये सब बातें लिखी हैं, इसमें वही बता रहा हूं मैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि इसका वर्गीकरण किया। फिर उसे रंगभूमि है ना, जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, ऐसे अधिकारों में उसे विभक्त किया, लेकिन उनने उसे नाटक का रूप दिया। टीका आत्मख्याति टीका में नाटक का रूप दिया, तो पुण्य पाप अधिकार एक नाटक है का एक एक अंक है, और अब वो ये समाप्त होने जा रहा है, तो अंत का मंगलाचरण है, जिसे आप नाटक देखते हैं ना स्टेज पे, तो जब पहले आते हैं तो पहले एक मंगलाचरण करते हैं, ये अभी अभय कुमार जी पंचकर्णा की स्टेज पे कराते हैं कि नहीं कराते हैं क्या, तो शुरू शुरू में एक मंगलाचरण गवा देते हैं, फिर अंत में कहते हैं कि एक और एक संगीत करके खत्म, प्रोग्राम खत्म करने के पहले भी कर देते हैं ना, बीच बीच में भी कर देते हैं, ऐसा ऐसा इसमें भी होता है, जहां जैसी आप सकती है तो अंत का भी मंगलाचरण कर देते हैं, बीच बीच में मंगलाचरण कर देते हैं, वो सारी प्रक्रिया इसमें चलती है। नाटक समय सार में बनारसी दास ने फिर आकर के देखो पहले अपन लिखते हैं अधिकार, ऐसा लिखते हैं अधिकार, अध्याय, परिच्छेद, लंब, ऐसे नाम सुने आपने, श्रावकाचार्य में तंग श्रावकाचार्य में लिखा परिच्छेद, शत्रुणा मणि में लिखा है लंब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है अधिकार, है पंचाध्यायी में लिखा है अध्याय, है वे टुकड़े ही, लेकिन उनके ऐसे अलग अलग नाम उनमें दिए जाते हैं। तो अमृतचंद्र ने इसको अंक नाम दिया, अपन भले ही ऊपर लिखते जीवा जीवाधिकार, ऐसा हम संपादकों की कमजोरी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी समझ में भी आता है लेकिन पहले से लिखा चला आ रहा है और वो इतना प्रचलित हो जाता है कि हम उसको बदलना पसंद नहीं करते, वही बात चलने देते हैं। इसमें अंक है, देखो अभी अपन सबसे अंत में देखो समझना, 262 पेज गए, इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत समय चार की आचार्य अमृतचंद कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका एवं डॉक्टर हुमचंद भालकर ज्ञान प्रबोधनी हिंदी टीका में पुण्य पाप का प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ। वो शुरू शुरू में लिखते प्रथम अंक का, अंक का लिखते हैं पहला अंक, अब उबरा बने अधिकार लिखा हुआ है, एक कमी है। लेकिन कमी कैसी जाएगी, अभी इतना प्रसिद्ध हो गया है वो, क्या उसे कोई ज्यादा सैद्धांतिक फर्क तो आएगा नहीं, तो अपन कहा झंझट में पड़े, इसलिए वही चलने दो। तो इनने तो उसका नाम अंक रखा, समझे ना। अब बहुत से लोग लाल बहादुर शास्त्री जैसे पीएचडी डॉक्टर विद्वान ने, जबकि मोक्ष महा प्रकाशक में हर अंत में टोनामल जी खुद लिखते हैं पहला अधिकार समाप्त हुआ, और उन्होंने उसको अध्याय नाम लिख दिए, उन्होंने उसको विचार ही नहीं किया कि टोनामल जी इसको अधिकार कहते हैं कि अध्याय कहते हैं, और उसमें अध्याय 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 छाप दिया। फिर बनारसीदास ने क्या किया कि इनका नाम द्वार रखा, देखो जीव द्वार, अजीव द्वार, आश्रम द्वार, ये क्यों रखा, क्योंकि नाटक की स्टेज पर वो दरवाजे से प्रवेश करता है, इसलिए उन्होंने दरवाजा रखा, पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, जैसे होता ना बगल में जो दरवाजा है ना, देखो इधर हम चवाद भी लगवा सकते थे, इधर इधर स्टेज है ना, स्टेज पर ये दो द्वार हैं। तो वो यहां से प्रविष्ट होता है ना पात्र, इसके पीछे मुछे मुछे रंगते हैं, जो भी करना होता है उन्हें करते हैं, और इन द्वारों से प्रविष्ट होता है। तो उन्होंने उसे नाट्य कला की दृष्टि से इसका क्या नाम रखा, प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, कर्ता कर्म द्वार, पुण्य पाप द्वार। अब ये जो मंगलाचरण का कलश है, इसे अपन पढ़ते हैं, और इसकी जो विशेषताएं हैं ये सब चूंकि अंत में इसमें सब बताई हैं, इसलिए मैंने आपसे इनकी चर्चा की थोड़ी। भेदोन्मादम धर्म रस भसान नाटयन पीत मोहम मूलोन्मूलम सकलमपि तत् कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत परम कलया साधमारब्ध के लिए ज्ञान ज्योति कबलित तमा प्रोज्वरे भरे ने। ऐसे छंदों का चुनाव भी रसों के हिसाब से किया जाता है, पर ज्ञानवाद में ये देखते हैं कि छोटा छंद है बड़ा छंद है, यदि इसमें ज्यादा भाव हैं तो दोहा में नहीं आ सकते हैं, तो हम दोहा नहीं लिख करके चार लेन वाला कोई छंद लिखेंगे, और चार छंद में भी नहीं लेन में भी नहीं आ सकता है, तो हम आठ लेन वाला मनहन कवित्त वगैरह लिखेंगे। लेकिन आठ लेन में भर्ती बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना भाव नहीं है, तो छह लेन का छप्पे लिखेंगे। छह लेन के छंद होते हैं, कौन कौन होते हैं जानते हो, छह लेन के छंद कुंडलिया होती ना, कुंडलिया क्या होती है, पहला दोहा फिर चार लेन रोला की मिला करके एक कुंडलिया बन जाती है, चार लेन रोला की और दो लेन छप्पे की, दो लेन वो उल्लाला की, वो छप्पे बन जाता है, बहुत है उसमें। तो इस तरह से ये छंद यहाँ क्यों रखा, तो ये छंद इसलिए रखा क्योंकि इसमें चार लेन में समाता नहीं था विषय, और आठ लेन के लिए लायक विषय नहीं था, तो छह लेन का रखा। आठ लेन का छंद सुनते हैं, छह लेन का सुनते हैं, जैसे कि अपने श्री मंदिर पूजन है वो छह लेन के चुने, सिद्ध पूजन है तो अर्घ्य का छंद आठ लेन का चुना, और बाकी के चार लेन के हैं, क्योंकि हम जो भाव कहना चाहते हैं वो भाव उतने लेन में नहीं आता तो क्या करें। अब जो सोर्ठा है दोहा है, पहले कई लोगों ने चुने हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से पूजन के लिए वो अच्छे नहीं है। अब जी क्यों, तुम कुछ जगह ही नहीं है, क्या कहोगे तुम, अब जिसको कुछ कहना ही नहीं है ये हिमाचल की धार, पूर्व समुद्र शीतल से भगवान आपने मार दस लक्ष्मण बंधन सदा, अब दो लेन में भी एक लेन तो आश्री में चली जाएगी है? अब उसमें क्या जल का चंदन का नाम ही आएगा मुश्किल से। तो हम भगवान की भक्ति करने बैठे हैं तो थोड़ी जगह तो मिलनी चाहिए कि जल का छंद है। तो हमने नक्की किया कि हम जल के ना तो हम जल की प्रशंसा करेंगे क्योंकि हम जल की पूजा नहीं कर रहे हैं, जल से पूजा कर रहे हैं। क्या तो हमने भगवान की पूजा करेंगे लेकिन जल के छंद में भगवान के उन सब विशेषणों को याद करेंगे जो जल से जुड़ जाते हैं। तो हमने ये कह दिया कि जल से शीतल हो, जल से ठंडक हो, जल से मल प्रहारी हो। बोलो एक छंद जल का, बोलो बोलो जरा। देखो अब ध्यान देना इस पे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या वो जल की बात है।
प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्या मल धोने को जिनवर तुम ही तो मल परिहारी हो। तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो, जलधर अमृत बरसाते हो, भविजन मन मीन प्राणदायक, भविजन मन जल जखिलाते। हे ज्ञान पयो निदिशि मंदर, यह ज्ञान प्रतीक समर्पित है, हो शांत गेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है।
इसको बेकार नहीं समझो, तुमको ये पूजा करने में आनंद आएगा। फिर अभी खड़े रहो जरा, मुझे पूरा याद नहीं है, इसे अर्थ करना है मुझे। देखो तुम जल से निर्मल हो, तलब शब्द क्या है, प्रूवर तुम जल से निर्मल हो, तो जल का जो है ना निर्मल होना, लेकिन स्वच्छ वो तो मेल है ना,
जल से शीतल,
जल से शीतल ठंडे हो, निर्मल हो और मल परिहारी हो। मल परिहारी हो माने क्या ये जो कपड़ा धोते हैं तो पानी से धोते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, तो मल का परिहार किया ना उसने, यहाँ गंदगी फैल जाए तो पानी से धो दो तो साफ हो जाती है। जल से शीतल हो, जल से निर्मल हो और जब मल परिहारी हो, मल को धोने वाले हो, पानी जैसे भगवान तुम। और हाँ दूसरी पंक्ति बोलो।
तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो,
सम्यक ज्ञान के समुद्र हो,
जलधर अमृत बरसाते हो,
क्योंकि अमृत बरसा, अमृत रूप जल की वर्षा करते हो और सब पानी से संबंधित बातें होंगी, तो पानी की क्वालिटी है वही सब उसमें होगी।
भवि जन मन मीन प्राणदायक,
भवि जन मन मीन प्राणदायक, भव्य रूपी जो मछलियां हैं, भवि जन भव्य जीवों का मन वो है मछली, भव्य जन नहीं है मछली, कौन है, भवि जन मन मीन वो है मछली, जैसे पानी मछली को जीवन देता है ना, ऐसे भव्य जीवों के मन रूपी मछली को तुम जीवन देने वाले हो। भवि जन मन मीन प्राणदायक,
भवि जन मन जलज खिलाते हो,
भव्य रूपी जो हैं उनके मन हैं बेहुए कमल, तो उन कमलों को तुम खिलाते हो मन सूरज जैसे हो।
चलो सरोवर भी ले सकते, सरोवर में कमल खिलते तो सरोवर जलाशय से,
सूरज की रोशनी से जल के समुद्र हो। हाँ,
हे ज्ञान पयो निधि सी मंदर, यह ज्ञान
तुम ज्ञान के समुद्र हो, पयो निधि माने पय माने पानी और उसकी निधि माने खजाना, माने तुम ज्ञान के दरिया हो। हाँ, और
यह ज्ञान प्रतीक समर्पित है,
ज्ञान की तुम्हें जल की इतनी विशेषताएं हैं, तुम एक ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान भी निर्मल होता है ना और जल भी निर्मल, एक ज्ञान के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें जल चढ़ाता हूँ। और चाहते क्या हो बेटा, कि मेरी गे निष्ठा शांत हो जाए। गे निष्ठा माने पर पदार्थों को जानने की, जो बहुत मेरी उत्कंठा होती है, ये देख लूँ, ये जान लूँ, ये जान लूँ, ये जान लूँ, ये पर को जानने की निष्ठा, पर में निष्ठा, ये निष्ठा ये मेरी समाप्त हो जाए। अब आप इसने देखा कि इसमें जल को आश्रय लेकर सारे भगवान के गुणों की प्रशंसा की है और जल के आधार से ही मांग भी प्रस्तुत की है। अब द्वारा पढ़ो ये छंद शांति से।
प्रभुवर तुम जल से शीतल हो, जल से निर्मल अविकारी हो, मिथ्या मल धोने को जिनवर तुम ही तो मल परिहारी हो। तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो, जलधर अमृत बरसाते हो, भविजन मन मीन प्राणदायक, भविजन मन जलज खिलाते हो। हे ज्ञान पयो निधि मंदर, यह ज्ञान प्रतीक समर्पित है, हो शांत गेय निष्ठा मेरी, जल से चरणाम्बुज चर्चित है।
आप देखो एक पद्धति है, अब इतनी चीजें कहीं दो लाइन कम कर देते तो उतनी चीजें छूट जाती है। अब आपको तो ये पूजन अच्छी नहीं है, हमको तो फटाफट दो लाइन वाली में 5 मिनट में निपट जाती है। अरे इसको तुम पढ़ो सचमुच, जब मैं खुद ही सुनता हूँ ना तो मुझे कितना अंदर से उल्लास आनंद आता है। आप उसका ऐसा अर्थ समझोगे तो आपको भी आनंद आएगा। इस सुबह 5 बजे शुरू कर देते हैं ना, चलाते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता, सुनता रहता हूँ। कुछ भी कोई भी चीज हर एक के में है, हर पूजन में है, अपने में नहीं, उसका भाव तो है ना कुछ, और उसके पीछे कुछ चिंतन है, कुछ सोचा है कि क्या करना अगले नाम पूजन के लिए। पूजन थोड़ी करना है। हमारे गुरु जी थे ना मक्खनलाल जी, वो 1 घंटे में 100 पूजने कर लेते थे। मैंने क्या करते थे एक आधे बताई कि नहीं बताई मालूम है आपको? नहीं, बस पूजा रख देते, सामग्री रख लेते थे और वो जना, और देव शास्त्र रूपी जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम संसार विनाशना चंद्रम अक्षर पुष्पम अष्टक बोलते ही नहीं थे। और ओंगरी में भी वो देवसास गुरु भैया एक ही दफे बार बार क्या को रिपीट करना, जलम चंद्रम अक्षम देवसास गुरु की पूजन हो गई, फिर फटाफट 10 लक्षण हो गई, ये हो गई वो गई, और वो ऐसे शांति से चढ़ाते ही नहीं थे। हम मजाक उड़ाते थे आपस में बैठ करके, एक पूजा देखो कितने हो जाते हैं, एक साल इतनी बढ़िया हो जाती है। हम उन्होंने कहा कि साहब गुरु जी की लोंगरी क्या है, जल चढ़ाए जल से पूजा हो गई ना, तो छंद बोलने की जरूरत क्या है। हम ये कहते थे इतनी ज्यादा पूजा करने की जरूरत क्या है, एक देवशास गुरु में सब आ जाते हैं, जितने भी पूज्य हैं इस जगत में कोई बाकी नहीं बचता। देवशास गुरु के बाहर कोई पूज्य है ही नहीं, उसकी पूजा करना मिथ्यात्व है। अब गिरीत है क्या गिरीत है, ये देवलाली वाले ने की करी। मतलब देवशास गुरु के नीचे कोई पूज्य नहीं है, बाकी जितनी पूजने हैं उसमें देख लेना वो देवशास गुरु ही हैं, किसी ना किसी रूप में वे सब देवशास गुरु ही हैं। हाँ अभी अब तो अपना एक कलश नहीं रह जाएगा, नहीं फिर अपना अधिकार पूरा रह जाएगा। क्या है पढ़ रहे थे ना अपन, क्या है? देखो जग शुभ अशुभ के भेद माने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। परसों मैंने कहा था कि ये जब मंगलाचरण करते हैं तो ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं, अब वो कहीं तो होती है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में, और कहीं होती है केवल ज्ञान के अर्थ में, और कहीं होती है सम्यक ज्ञान के अर्थ में। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस छंद में ये किसके अर्थ में है। मैं जानता हूं कि आप भूल करेंगे, और भूल क्यों करेंगे और कहां करेंगे वो मैं जानता हूं। हैं? किसको किया? आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान को कि आत्मा को? कि केवल ज्ञान को? आत्मज्ञान को माने सम्यक ज्ञान को, ठीक है ना? सही है, सम्यक ज्ञान को किया है। भ्रम कहाँ हो सकता था? इसमें लिखा ना केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग है, इससे आपको भ्रम हो सकता था कि केवल ज्ञान को नमस्कार होगा, लेकिन ये तो खेल है केवल ज्ञान से। वो केवल ज्ञान से खेलती है, तो केवल ज्ञान की बात अर्थ में नहीं है। वो ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान से खेलती है। हम कहते बच्चा किन से खेलता है? एक कारण से निकाला है, कौन से शब्द का अर्थ है ये? खेलोन मीलत परम कलया दादा, यानी आप नहीं निकाल सकते आसानी से। हमने अनुवाद किया है तो केवल ज्ञान से खेले काय का अर्थ किया है अध्यात्म। अब समझ में आया कि नहीं? बोल। हेलोन मीलत परम करया, एक हेलोन मीलत माने उछलती है, कूदती है, खेलती है। काय से? परम कला से। परम कला क्या है? उत्कृष्ट कला कौन है? केवल ज्ञान। तो वो ज्ञान ज्योति जो केवल ज्ञान से खेलती है, देखो इस सारी दुनिया मोह रूपी मदरा का पान करके क्या गलती करती है? अब आया ना छेड़ा में मोह अनादि पिया ना, मोह मद पियो अनादि, तो क्या गलती करती है? अनादि से मिथ्या की मामला करके क्या गलती की? तो अपन कहते हैं देह को अपना माना, स्त्री पुत्रादि को अपना माना, उनसे राग द्वेष किया, यही मानते हैं ना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। बोलो तुम देखो है कोई किताब मेरे पास में, जरूरत है क्या? नहीं बोलो क्या है इसमें? क्या लिखा? कि शुभ अशुभ में भेद मानने वाली गलती की, ये गलती शराबियों की गलती है। शराब पीकर जो लोग माता और पत्नी में भेद नहीं जानते हैं, ऐसे ही जे लोग शुभ और अशुभ में भेद नहीं जानते हैं, नहीं भेद मानते हैं। अब लोगों के ख्याल में आता है जो मैं कह रहा हूँ? शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदरा पान से, यानी शुभ अच्छा है अशुभ बुरा है ऐसा भेद मानना, ये मिथ्यात्व का उदय है, ये मिथ्यात्व के उदय का कार्य है। जग शुभ अशुभ में भेद माने मोह मदरा पान से, क्लियर हो गया ना? पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान। अब उस सम्यक ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिस सम्यक ज्ञान से वो मोह मदरा का पान से जो भेद जाना था, जिससे वो भेद मिट गया। क्या? पर भेद इनमें है नहीं जाना है सम्यक ज्ञान से, यह ज्ञान ज्योति। अब देखो ये सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान ज्योति, क्लियर हो गया कि नहीं बात? अब यह ज्ञान ज्योति तम विरोधी अज्ञान की विरोधी है और खेल है केवल ज्ञान से, माने ज्ञान ज्योति उदय हुई है तो ये खेल खेल में केवल ज्ञान को तक पहुंच जाएगी। कोई अरे हेलोल मीलत मैंने सहज भाव से अपन कहते हैं खेल, एक काम तो हम खेल खेल में करते हैं, एक काम तो हमारा हंसी खेल है। तो सम्यक ज्ञान ज्योति को केवल ज्ञान तक पहुंचना तो एक हंसी खेल का काम है, माने कोई बहुत श्रम का काम नहीं है। खेल केवल ज्ञान से जयवंत हो इस जगत में जगमगे आत्म ज्ञान से, वो सम्यक ज्ञान ज्योति आत्मा को जानती है इसलिए जगमगाती है और वो जयवंत हो। ये देखो जयवंत हो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। अपन नमस्कार बोलते ना तो मैं हाँ नमस्ते, ये इसी का नाम नमस्ते नहीं है, ठीक है ना? तब ये ठीक है, इसका नाम नमस्ते है। माना आप कोई भी शब्द का उपयोग करते हैं सिर्फ उसको सम्मानित करने के लिए, अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि हम मिलते हैं ना आपस में, हम मिलते हैं ना आपस में, तो हम आपस में मिलते हैं तो हम किसी ना किसी रूप में उनको हम सम्मानित करते हैं। देखो एक बात मैं बताता हूँ, जब ये इसमें जब बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बता देता हूँ। हम लोग जब कोई भी आदमी भाषण देता है और उसे दो मिनट का समय मिलता है और फिर वो जो लंबी लिस्ट यहाँ से यहाँ तक सुनाता है, एक आध तो छूट जाता है उसमें और एक मिनट खराब हो जाता है। मैं तो सिर्फ भगवान संतप्त दो लेन का संतप्त मानस शांत हूँ और जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान से, और शुरू कर भगवान महावीर को याद किया और अपनी वासी भी शुरू करने का। कितने देवताओं को पूजूं फिर भी एक आध देवता नाराज हो जाने वाला है कि उसका नाम नहीं आया। अब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, अब उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और महाराज भी विराजमान होते हैं, तो उनमें से कई लोगों को जरा थोड़ा सा कि ये कैसा अजीब आदमी खड़ा किया है, ये क्या करता है। तो मैं उसमें थोड़ा ऐसा करता हूँ कि मैं बोलूंगा कि आज हमारा महासौभाग्य है कि महाराज जी के सानिध्य में हमको ये काम करने का अवसर मिल रहा है। इस तरह मैं उनको याद कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, अब दो से निपट गया, यदि मैं नाम लेता तो 20 लेने पड़ते। क्या माने, जो सचमुच जिनकी उपेक्षा किसी भी कीमत पर उचित नहीं है उसको हम दूसरे तरकीब से भी सम्मानित कर सकते हैं, ख्याल में आई ना। लेकिन आपको हर एक आदमी नहीं समझ सकता, क्या समझने वाले समझते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, सारा जगत को मूर्ख मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक बात है कि भाई एक चीज वो कहते हैं कि वो केवल ज्ञान से खेलती है, माने सम्यक ज्ञान ज्योति तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी और आत्म ज्ञान से जगमगाती है। सम्यक ज्ञान में पर पदार्थ भी जानने में आते हैं अभय जी, लेकिन वो जानने से वो ज्योति जगमगाती नहीं है, आत्मज्ञान से जगमगाती है। आप समझे ना, उसका सौभाग्य, उसका सबसे बढ़िया काम ये है। हम अखबार भी पढ़ते हैं और समयसार भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान की सार्थकता अखबार पढ़ने में नहीं है, समयसार पढ़ने में है। पढ़ना तो एक सही है, जगमगे आत्मज्ञान से, ये कहना चाहते हैं वो। देखो अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अधिकार के अंत में कही जानी चाहिए, तो अपन वहां चलते हैं। इसके अंत में अमृतंदाचार्य जो टीका लिखते हैं, कलश खत्म हो गए फिर वो गद्य में लिखते हैं, इति पुण्य पाप रूपेण द्वि पात्री भूत एक पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम। ये संस्कृत जानने वाले जरा इस पर ध्यान दो, क्या कह रहे हैं। इस प्रकार कर्म ऊपर से लो, कर्म पुण्य पाप के रूप में जो दो पात्र बन के आया था, द्वि पात्री भूत है ना, समझ में आया ना। अब वो एक पात्र बन के जा रहा है, एक पात्री भूय कर्म निष्क्रांतम, भूत और भूय, समझ आ गया ना। ये भूत और भूय क्या है, वो ये कह रहे हैं। अब देख इसमें बहुत मरम है, मैं समझाऊंगा आपको कि सारे अधिकारों में क्या होता था। ये होता था कि जीव और अजीव दो पात्र हैं, वो एक बन के आते थे, समझ गए ना, कर्ता और कर्म एक बन के आते थे जीव अजीव। तो वो कैसे आते थे, जैसे हमें इस स्टेज पर घोड़ा दिखाना है, अब घोड़ा तो ला नहीं सकते स्टेज पे, और घोड़ा ले भी आओ तुम तो हाथी दिखाना है, फिर क्या करें। तो हम क्या कहते हैं, दो लड़के एक आगे एक पीछे ले, वो पर्दे के भीतर मिल मिला करके आते हैं ना, और घोड़े और हाथी जैसे दिखाते हैं। तो दो हैं पात्र और देश बनाते हैं एक, एक तो ही होता है। तो वो जब पता पोल खुल जाती है तो वो अलग होके चले जाते हैं। अब जरा समझना है, नाटक शब्द की, नाटक कहां से उत्पन्न हुए, बहु रुपया आता है ना आपके गांव में, सबसे श्रेष्ठ सबसे पहला नाटक वो है। कौन सा? कि वो बहुरूप या वेश बना के आता है, और हर दुकान में वो पुलिस का वेश बना के आया, इंस्पेक्टर का वेश बना के आया, और हर जगह जाता है अपना रूप दिखाता है। और जो आदमी पहचान लेता है, पहचान लेता है माने कि ये पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहुरूप या है, तो उसी वक्त वहां से भाग जाएगा, नमस्कार करके भाग जाएगा, पैसा उगाने बाद में आएगा। और जब तक वो नहीं पहचान पाएगा, वो समझेगा कि सचमुच पुलिस के इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आओ साहब, बिरादर साहब, आज कैसे पधारे, चाय पानी लाओ, तो बराबर वो करता रहेगा। ये क्या बताना चाहते हैं नाटक बहु रूपिया का? तो वो कहते हैं जब तक नाटक, तो तब तक ही नाटक सही है कि जब तक लोग उसे पहचान ना पाए। यदि पहचान लिया तो काएगा नाटक? ये नाटक स्टेज पे नाटक थोड़ी है, ये तो पहले ही से जानते हैं कि श्रीपाल का पाठ फलाना कर रहा है, क्या होता वो नाटक? वो ही नाटक है कि जो पहचान नहीं पाए मेरी। आप कुछ भी कहो कहानी में, जो त्रिया चरित्र नाम की कहानी है उसमें मिलेगा वो असली नाटक, उसने लिखा भी है कितना बढ़िया नाटक है। हम तो जान ही नहीं पाए कि तुम जान लेते कि नाटक है, तो नाटक क्या? यानी नाटक की पोल खुल गई तो नाटक खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो ये दो एक भेष बना, जीव और अजीव एक ही है, ऐसा बना करके आए थे, और पूरा वर्णन करते करते जब ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, ये दोनों अलग अलग हैं, तो अधिकार समाप्त हो गया और वो एक बन के आए थे, वे दो बन के निकल गए। समझ गया ना? जीवा जीवा अधिकार का मतलब समझ गए? अभी पुण्य पाप अधिकार में क्या हुआ है? इसमें उल्टा हुआ है। उल्टा क्या हुआ? कि कर्म नामक पात्र है एक, और दो भेष बना के आया है, क्या? एक पुण्य और एक पाप, एक भला और एक बुरा है एक। अब जाता है स्टेज से, इधर से निकल के आता है तो पाप की बात बोलता है, इधर से निकल के आता है तो पुण्य की बात बोलता है। वो एक एक पात्री नाटक होता है ना, मोनो एक्टिंग, उसमें वही आदमी पति पत्नी दोनों का पाठ करता है, और वो ऐसी आवाज में बोलता है जैसे बिल्कुल पत्नी बोल रही हो, पति बोल रहा हो, स्टेज पर करता है ना, आकाशवाणी पर ज्यादा आते हैं ऐसे नाटक। तो ये मोनो एक्टिंग वाला अधिकार है कि यहां से कर्म था एक और भेष बनाए थे उसने दो, और पुण्य और पाप, तो एक भला बन गया था, एक पाप बन गया, बुरा बन गया था, और अब वो पहचान लिया गया कि दोनों एक कर्म ही हैं, ये दो अलग अलग नहीं हैं, तो वो अपना भेष देखते भाग गया स्टेज से, वो निकल गया भाग गया। देखा ना ये करके, देखो अभी क्या, दोनों ने एक भेष थे। अब मैं उसको उदाहरण देता हूं, मैंने दिया है अपनी एक किताब में कि दो गुंडे आए और भरे चौराहे पर एक लड़की से छेड़खानी करने लगे, क्या, और उसे पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाने लग गए। तो वो चिल्लाई, पुलिस पुलिस पुलिस, और सब आदमी जुड़ गए। इतने में पीछे से दो गुंडे आए और उनने पहले के दो गुंडों की बहुत अच्छी पिटाई की, वे उनके साथी ही थे, और उस लड़की को उनसे छुड़ा लिया, बचा लिया, और बचा लिया, और जनता भी देख रही खूब, पुलिस भी खड़ी है, जनता भी खड़ी है। फिर वो बोले, बहन कहाँ जाना है? कि बापू नगर टोडा मल स्मारक भवन, चलो तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें वहां छोड़ देंगे, नहीं तो अभी ये अभी तो हमने बचा लिया, ये फिर गुंडे तुम्हें परेशान करेंगे, क्या करें? क्या ठीक है, चलती हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आजकल जमाना अच्छा नहीं है, लोग हमको ही गुंडे समझ के वही समझेंगे उड़ा के ले जा रहे हैं। यदि कोई आए पुलिस पूछे, कोई पूछे तो ये कह देना कि हमारे भाई हैं, समझ में आ गया नहीं, तो हम बैठा लेंगे, नहीं सर, अरे आपने हमारी रक्षा की तो भाई तो हो ही, भाई ही हो। बैठ गए आराम से और ले जाकर जिस अड्डे पर वो लोग थे ना दो गुंडे पहले के, वहीं पहुंच गए और चारों गुंडे मिल गए। तो वो जो पहले के दो गुंडे थे वो तो है पाप, जो मार पीट के पकड़ते हैं आपको, प्रतिकूलता बना करके आपको फंसाते हैं, समझे ना। और वे जो बाद के दो गुंडे आए वे हैं पुण्य, जो आपको अनुकूलता प्रदान करके फंसाते हैं। लेकिन हैं दोनों गुंडे, दोनों पकड़ करके वहीं एक गड्ढे पर ले जाने वाले हैं, लेकिन उनसे बचना आसान है। चिल्लाओगे पुलिस आ जाएगी, जनता बचा लेगी, लेकिन इन गुंडों से तो तुम ही उन्हें बचाओगे। कहेंगे नहीं ये मेरे भाई हैं, ले जाने दो, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है? तो वे चार जो गुंडे थे वो वास्तव में एक थे, माने एक ग्रुप के थे, एक गैंग के थे। गैंग कहना अच्छा लगेगा क्यों है? लेकिन वो दो दो तरह से बन के आए थे। तो ये पुण्य और पाप ऐसे ही दो तरह से बन के आया था। एक धमकाता था, बेटा तुमने ऐसा नहीं माने, हमारी बात नहीं मानी तो हम नरक में ले जाएंगे और इतनी पिटाई करेंगे तुम्हें सब याद हो जाएगा, समझ में आई ना। और दो कहते कि नहीं तुम हमारी सुनो, हम तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, वैसे बढ़िया बाग बगीचे दिखाएंगे कि तुमने कभी जिंदगी में देखे नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों हमें संसार में रोकने के लिए अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं। ज्यादा खतरनाक कौन है, पाप का उदय के पुण्य का उदय? ये सारी दुनिया जिससे बचना चाहती है, सारी दुनिया जिसे बुरा कहती है, जिससे धोखे होने की संभावना बहुत कम है, कि जिनसे निरंतर धोखा होता है। तो ये जो कर्म नाम का गुंडा था वो पुण्य और पाप नाम के दो अलग अलग बन के आया था। एक मारता था और दूसरा बचाने का अभिनय करता था, और इस तरह दोनों अपने कब्जे में तुझे करते थे। ख्याल में ना, एक मारता था और एक बचाता था, दोनों अपने कब्जे में करते थे। ख्याल में आई ना। अब आज वो पोल खुल गई, ये दोनों कर्म हैं, तो दोनों भाग गए। ये अधिकार का अंत है। मैंने एक रचना लिखी थी, अब वो तो खोई गई कहीं, लेकिन उसकी थीम मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान में से उड़ रही है, फिर आगे तो बताता हूं। मतलब इसी तार की थी वो, अब जो फिर आई याद के सीता जी को जब बैराग हुआ और जब दीक्षा लेके जाने लगी अग्नि परीक्षा के बाद, समझ लो पश्चाताप का अगला खंड लिखा था, अब खो खो आ गया कहीं। तो वो जाने लगी तो रामचंद्र जी ये समझाते हैं कोई कि भाई अब मत जाओ, घर में ही रहो। तो वो जो कहती है वो बात जरा तर्क सुनना, पश्चाताप में नहीं है वो तर्क। वो कहती है कि सारी दुनिया में चारों तरफ गंदे से गंदे लोग भरे हैं, उससे बचने के लिए नारी ने एक व्यक्ति को चुना, तो ये सारे खोटी निगाह वालों से वो बच जाएगी। है ना, जो जो कुंवारी होती है, विधवा होती है, जो बेचारी उसे पचासों की खोटी निगाहें होती हैं, और हर आदमी उस पर गलत प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन जो विवाहता होती है उसके साथ नहीं करता है। अमेरिका में टोरंटो में कनाडा में एक बहन है भद्रा बहन, वो विधवा हो गई। पहले हम जब घर में थी पति सहित, तब भी हम उसके घर में कई दफे गए थे, जब विधवा हो गई तब भी हम उनके घर में गए। बहुत मर्म की बात सुनने की है, तो वो बिल्कुल वैसी जैसी वो पहले रहती थी ना, वैसे ही कपड़ों में, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही अप टू डेट। तो हमें तो मालूम पड़ गया था कि विधवा होगी, तो हम तो बड़े ऐसे गए थे उसके घर में जैसे अपन कोई जाते ना बैठने के लिए। भद्रा बहन नाम था, अभी भी होगी। तो वो उसका वो रूप देख करके और हम अटपट सकते में आ गए। तो हमारा बहुत सब खुला खाता था, तुमने कहा भद्रा बहन ये क्या है? तुमने कहा दादा आप समझते नहीं हो। मैं समझा नहीं क्या क्या है, बता क्या बात है। बोले जी अमेरिका है और यहाँ वो काम करती थी, स्टेट बोलते हैं जो मकान मकान बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं रियल स्टेट, रियल स्टेट का बिजनेस खुद करती थी वो, पहले भी करती थी। तो बोली मैं बिजनेस में जाना पड़ता है और यदि मैं ऐसे चिन्ह बनाऊं कि मैं विधवा हूं जो इसका प्रतीक हो तो इन अमेरिका में रोजाना तीन ऑफर आते हैं। क्या रोजाना तीन ऑफर आते हैं, ये मालूम पड़ा कि ये खाली है, यहाँ जीना मुश्किल है, इसलिए सब सौभाग्य के चिन्ह पहन के रहो तो सब समझते हैं कि ये तो भाई गृहस्थी वाली है तो शांति से दे सकते। बोलो क्या, कितना दिव्य क्षेत्र काल में परिस्थिति कितनी बदल जाती है बोलो। अब ये तर्क हिंदुस्तान वाली महिलाएं समझ सकती हैं? है हमको लगा कि नहीं भद्रा बहन ठीक है, खबरा जी आपकी समझ में कुछ आया क्या? कहा मैंने ये मूछ वालों की समझ में नहीं आया है? उसने ये कहा, अभी भी है वो उतने सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ अपना अपना तो प्रयोजन ये है कि हमारी पहचान का चिन्ह क्या होना चाहिए, जो पहचान लिए जाएंगे तो वो भाग जाता है पुण्य पाप। तो मैंने उसमें क्या तर्क दिया था कि मैंने अपनी रक्षा के लिए हजारों लोगों की निगाहें मेरे तरफ ना घूमे और रोजाना तीन ऑफर ना आए, इसके लिए मैंने एक आदमी को चुना था। अदरक थोड़ी सी वो खतरनाक बात है, लेकिन मुझे माफी पहले मांग लेता हूँ और बाद में आप सुन लो थमा करके कि वो कहते हैं कि जिस आदमी को जिस रक्षा काय की रक्षा चाहिए थी, जिस बात की रक्षा करनी थी इज्जत की, तो सबसे पहले उसने इज्जत लूटी, रक्षक ही सबसे पहले भक्षक बना। और उसके बाद भी वो बचा कह सका, फिर भी रावण जैसे आए, ऐसा सब कुछ लुटाकर एक चौकीदार रखा था, समझना, फिर भी बचा बचे कहां, रावण जैसे नालायक आए और वे अपहरण करके ले गए। तो जैसे लगा था ना कि उसका उत्तरदायित्व तो हमारा था, जंगल में उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारा था और हम तो उसमें फेल हो गए, बचा नहीं पाए। अब उसे अपराध के दे रहे कि 6 महीना हो गए घर क्यों रही, क्या 6 महीना क्यों रही, क्यों गई, अरे तुम बचा नहीं पाए इसलिए गई और तुम 6 महीना तक छोड़ा नहीं पाए इसलिए रही, अपनी मर्जी से रही ना, और फिर इसी की सजा में हमें बनवा। अब उस रक्षक के पास रहकर क्या करें, तर्क इस दुनिया के गले उतरना बहुत कठिन था, हो सकता है कि इसमें नहीं जुड़ सकते थे, लेकिन कौन को समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, पिटाई और होगी कहीं इसलिए उसमें से मैंने वो अंश निकाल दिया है? लेकिन आप लोगों में कितने तक पहुंचा मैं नहीं जानता हूं, जिसकी समझ में नहीं आया हो वो अपने पड़ोसी से पूछे और आप आपस में समझ ले, फिर भी कहीं कहीं कसर रह जाए तो मेरे से पूछना, मतलब ये क्या है, हमने पुण्य को पाप से बचने के लिए एक एक चौकीदार के रूप में चुना था, लिखा ना 17-85 काल में अशुभ भाव से बचने के लिए, सुनो और खोटी जगह उपयोग ना जाए वहां से बचने के लिए, स्थान में राग के निषेध के लिए हम कभी कभी ज्ञानियों के भी पुण्य होता है इसलिए चुना था ना, लेकिन इस पुण्य ने ऐसी भोग सामग्री लाके खड़ी करी कि हमें पाप भाव पैदा हो गया और उसी में फंस गए, समझ में आया क्यों, हमने इस पुण्य को इसलिए अपनाया था कि हम पाप से बचने के लिए, लेकिन पाप से बचा कहां पाया, वो सामग्री इसने इकट्ठी करी कि जिसके सेवन से पाप होता है, ये सारे तर्क मैंने दिए थे उसमें, कब 18 वर्ष की उम्र में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब लिखा था वो सब, ये भी उसी वक्त का चिंतन है जो उसके बाद आज मेरे मुंह से निकला है, और आज तक किसी को नहीं बताया, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अभी मुझे ख्याल में आ गया कि भाई ये बात आज बतानी चाहिए तो बता दें, गंभीर था सोचना। अब देखो खत्म हो गया ना, अभी का 2 मिनट है, तो पुण्य पाप आ गया ना, एक पात्र हो गए आए थे पुण्य पाप रूप दो पात्रों को रूप में नाचने वाला यह कर्म अब एक पात्र होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, इस ग्रंथराज को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह ये पुण्य पाप अधिकार खत्म होता है। अब अगले शिविर में जो 31 जुलाई से 9 अगस्त तक किसी जयपुर में गारंटी से लगेगा और उसमें जो आश्रय अधिकार चलेगा, मैं तब जा रहा हूँ विदेश और शिविर के पहले ही आऊंगा, बीच में कहीं ऐसे भ्रम फैले कि जयपुर में शिविर नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल नहीं मानना। मैं आपको कह रहा हूँ जयपुर में शिविर लगेगा लगेगा और लगेगा, काल में आई ना। और आप सब लोग उस आश्रय अधिकार समझने के लिए उस शिविर में अवश्य पधारें।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप सह